आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिए संवाद और कूटनीति का किया समर्थन। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने का उठाया मुद्दा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए हैं कई बड़े कदम। मुख्यमंत्री ने निवेश मित्र 3.0 पोर्टल सिंगल विंडो सिस्टम का किया शुभारंभ। कहा, पारदर्शी नीतियों और सख्त कानून व्यवस्था से बदली प्रदेश की पहचान। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हिंदू सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म में धर्मांतरण पर नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का दर्जा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति बहाली के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन किया है। राज्यसभा में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत ने तनाव कम करने और होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने का मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का उद्देश्य संवाद और कूटनीति के माध्यम से इस क्षेत्र में शांति बहाल करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पेट्रोल डीजल तेल गैस और उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।
भारत के पास 53 लाख मेट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मेट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र और पुरस्कार राशि का वितरण किया। कार्यक्रम में प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को लक्ष्मण अवार्ड और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया। पेरिस ओलंपिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी राजकुमार पाल और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को बतौर पुलिस उपाधीक्षक नियुक्ति दी गई है। वहीं पैरा एथलीट अजीत सिंह को जिला पंचायत राज अधिकारी और पैरा एथलीट प्रीति पाल को खंड विकास अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रिंकू सिंह को क्षेत्रीय खेल अधिकारी बनाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हॉकी खिलाड़ी उत्तम सिंह, जिम्नास्टिक्स के खिलाड़ी अभिजीत कुमार, कुश्ती खिलाड़ी जॉन्टी कुमार समेत कई अन्य खिलाड़ियों को लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं एथलेटिक्स के लिए प्राची और तान्या चौधरी को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं।
आज प्रदेश में अवसर भी है, संसाधन भी है और प्रतिभा भी है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल की सुविधाओं को हम लोगों ने बेहतरीन करने का काम किया है। ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ी को एकल गेम में हम गोल्ड मेडल में 6 करोड़ रुपए की सहायता उसे उपलब्ध करवाते हैं। सिल्वर में 4 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाते हैं और ब्रॉन्ज में 2 करोड़ की राशि राज्य सरकार अपने स्तर पर उसे उपलब्ध करवाने का काम करती है। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सरकारी सेवाओं में खिलाड़ियों को नौकरी में प्राथमिकता दी।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य अधिनियम 2019 में संशोधन करना है। इसके अंतर्गत एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट एक नामित चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश की जाँच करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी अस्थिरता के बीच भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश आज निवेश और व्यापार के लिए एक सुरक्षित, स्थिर और भरोसेमंद स्थान के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश ने बीते 9 वर्षों में पारदर्शी नीतियों, सख्त कानून व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग अनुकूल माहौल के जरिए अपनी पहचान को पूरी तरह बदला है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में निवेश मित्र 3.0 पोर्टल सिंगल विंडो सिस्टम के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने 85 से अधिक लेटर्स ऑफ कंफर्ट और 2781 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी भी हस्तांतरित करने के बाद कहा कि निवेश मित्र 3.0 पोर्टल को लॉन्च कर 200 से कम सेवाओं में समेकित किया गया है।
3.0 निवेश मित्र का जो हमारा सिंगल विंडो का है, इसमें एक सीमलेस ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल के अनुभव को सुदृढ़ करने वाला एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इस निवेश मित्र 3.0 को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें हमारे 43 से अधिक विभागों की सेवाओं को, जिनमें 530 से अधिक सेवाओं को एक साथ समेकित कर 200 से कम सेवाओं तक सीमित किया है। इसमें सभी प्रमुख सेवाएं निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के पात्र हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी अन्य धर्म जैसे कि ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि एक बार कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और सक्रिय रूप से उस धर्म का पालन करता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में 27 मार्च को रामनवमी का अवकाश घोषित किया गया है। सभी न्यायालय 26 मार्च को खुले रहेंगे। ये अधिसूचना महानिबंधक मंजीत सिंह शिवरन ने जारी की है। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर कल प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित कर क्षय रोग से मुक्ति का संकल्प लिया गया। कुछ स्थानों पर पोषण पोटली वितरित कर क्षय रोगियों को रोग से मुक्ति के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल ग्रेटर नोएडा में 100 दिन के टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उन्होंने निक्षय मित्रों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि सरकार देश को टीबी से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही है। सरकार टीबी उन्मूलन के लिए 6,365 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। श्री नड्डा ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों का सहयोग लिया जा रहा है। अयोध्या में रामनवमी के पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर वहां उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन विशेष तैयारी कर रहा है। अयोध्या के SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि आयोजन के मद्देनजर शहर में सुरक्षा, यातायात और पार्किंग के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेले को देखते हुए 27 मार्च रात 12 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश शहर में पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान अयोध्या की तरफ आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर डाइवर्ट किया जाएगा।
27 तारीख को रामनवमी का आयोजन यहां पर होना है, जिसके दृष्टिगत पूरे अयोध्या धाम को 6 जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन के प्रभारी एक एडिशनल SP लगाए गए हैं। जनपदीय पुलिस के साथ साथ बाहर से भी अधिकारी और फोर्स हमको प्राप्त हो गया है। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक का, डाइवर्जन का और पार्किंग का भी एक बृहद प्लान बनाया गया है, जिसको ऑलरेडी जारी कर दिया गया है।
चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन श्रद्धालु प्रदेश भर के देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में मां भगवती के 7वें स्वरूप कालरात्रि की उपासना कर रहे हैं। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर और बलरामपुर के मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। उधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिए संवाद और कूटनीति का किया समर्थन। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने का उठाया मुद्दा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए हैं कई बड़े कदम। मुख्यमंत्री ने निवेश मित्र 3.0 पोर्टल सिंगल विंडो सिस्टम का किया शुभारंभ। कहा, पारदर्शी नीतियों और सख्त कानून व्यवस्था से बदली प्रदेश की पहचान। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म में धर्मांतरण पर नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का दर्जा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।